आज का प्रातः क्लास है 3/6/1965 गुरुवार। रिकॉर्ड चला है ओम नमः शिवाय। ये महिमा किसकी सुनी? पारलौकिक परम प्रिय परम पिता परमात्मा अर्थात परमात्मा, फिर उसको याद करते हैं। जो भी भगत हो, बंदगी करने वाले हो, साधना करने वाले हो, वो सभी याद उनको करते हैं। उसका नाम फिर है पतित पावन। उसको याद करते हैं, उसका नाम पतित पावन है। किसके तन में बोला है? है ब्रह्मा के तन में बोला। बोलने वाला बाजू में बैठा है। फिर उसका नाम पतित पावन है कह के दूर क्यों कर दिया? क्योंकि जिसके बाजू में बैठ बोल रहा है वो स्वरूप, वो पर्सनालिटी पतित पावन नहीं है। भविष्य में वो पर्सनालिटी प्रत्यक्ष होने वाली है। तो बच्चे ये जानते हैं कि भारत पावन था और प्रवृत्ति मार्ग था। निवृत्ति में रह के पवित्र बने, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये बात भारत की है। जिस भारत में भगवान आते हैं वो प्रवृत्ति मार्ग में था। देखो श्री लक्ष्मी श्री नारायण, ये प्रवृत्ति मार्ग है ना। वो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म था जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। और उस समय भारत में पवित्रता, सुख शांति संपत्ति सब कुछ था। क्योंकि समझाया जाता है कि प्योरिटी या पवित्रता है तो शांति भी है, सुख भी है, संपत्ति भी है। अगर पवित्रता नहीं है तो नो प्योरिटी नो पीस नो शांति, तो सुख भी नहीं। तो देखो शांति के लिए ही भटकते रहते हैं, शांति के लिए जंगल में फिरते हैं। शांति चाहिए, शांति चाहिए, और कोई एक को भी शांति नहीं है। क्योंकि न शांति के सागर बाप को जानते हैं, ना अपने को जानते हैं। ना अपने को ऐसे जानते हैं कि मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर ऑर्गन्स हैं, इन द्वारा कर्म करना होता है, और मेरा स्वधर्म शांत है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म शांत है। ये इंद्रियां हैं ऑर्गन्स आत्मा के, शरीर के, और आत्मा को ये भी मालूम है कि अहम आत्मा निर्वाण धाम का वासी हूं, परम धाम का वासी हूं। यहां कर्म क्षेत्र पर ये शरीर का आधार लिए हम पार्ट बजाते हैं। आत्मा को तो मालूम है कि हमारा स्वधर्म शांत है, यानी शांति गले का हार है, और मनुष्य शांति के लिए जंगलों में धक्का खाते हैं। यहाँ वहाँ पूछते हैं मन को शांति कैसे मिले। अभी उनको ये पता ही नहीं है कि आत्मा मन बुद्धि सहित है। मैं आत्मा और उसका स्वधर्म शांत, आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान है, वो भी शांति का सागर। तो हम आत्मा ही भी शांति के सागर की संतान। तो जैसे आत्माओं का स्वधर्म तो शांत है, शांति कोई ढूंढनी नहीं पड़ती है, तो जबकि सब कोई अशांत हैं, देखो सारी दुनिया अशांत है, तो सारी दुनिया का क्वेश्चन हुआ ना। देखो सब कोई कहते हैं पीस कैसे स्थापन हो। अभी पीसलेसनेस है तो सारी दुनिया में अशांति है। तो क्वेश्चन ही होता है सारी दुनिया का, भाई सारी दुनिया पतित है, सब जानते हैं कि हम पतित हैं, तो सारी दुनिया का ही सवाल हुआ। अभी सारी दुनिया का मालिक तो ये है जिसका तुमने गीत सुना, ओम नमः शिवाय, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। अभी शिव कौन है ये तो कोई मनुष्य जानते ही नहीं है। पूजा करते हैं कई कई, तो अपन कोई शिवो हम कह देते हैं। शिव परमपिता परमात्मा है, अपन को शिव कह देना ये तो मूर्खता है। अभी शिव तो एक ही बाप है, अपन को शिव कहना ये तो बड़ा पाप हो गया, क्योंकि शिव ही एक है जिसको ही पतित पावन कहा जाता है। कोई मनुष्य को तो पतित पावन कहा ही नहीं जा सकता, ब्रह्मा को पतित पावन नहीं कह सकते, विष्णु को पतित पावन नहीं कहा जा सकता है, शंकर को भी पतित पावन नहीं कहा जाता है, न कोई मनुष्य को, न लक्ष्मी नारायण या जो भी देवताएं हैं उनको ही पतित पावन कहा जाता है। पतित पावन तो सिवाय एक के कोई है ही नहीं, सर्व का सदगति दाता तो वो एक ही है। तो कोई भी मनुष्य मनुष्य को पावन नहीं बना सकता। कोई भी मनुष्य मनुष्य की सदगति कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो है सारी दुनिया का क्वेश्चन। इसलिए गाया जाता है, देखो महिमा है सबका सदगति दाता, सब पतितों को पावन करने वाला। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि देखो भारत पावन था तब सतयुग था, और जब पावन था अभी तो पतित है। तो ये सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला कौन? वो तो कहते हैं कि उनको ही याद करना चाहिए, और तो कोई गुरु गोसाई कोई पतित को पावन नहीं बना सकते। ये तो समझाई दिया है कि जो भी गुरु गोसाई यहाँ के हैं वो तो खुद ही पतित हैं, पावन हो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये है पतित दुनिया। उसमें भी बाप ने सिद्ध कर दिया है कि देखो ये जो कहते हैं कि ये महान आत्मा है, पावन आत्मा है, पुण्य आत्मा है, नहीं, ये सब लोग पाप आत्मा है। क्यों? तो फिर बाप बैठ करके समझाते हैं, देखो मुझे अपने बाप को तो जानते ही नहीं, जो मैं आत्माओं का बाप हूं अपन को भी नहीं जानते, देह समझ लेते हैं, जानते नहीं है और बोलते हैं शिवाय नमः। ठीक तो है, अच्छा भारत में शिव जयंती गाई जाती है, जयंती गाई जाती है तो जरूर अंत में आया होगा। अंत में आया होगा इसे साबित होता है कि उस अंत होने तक कोई भी मनुष्य मात्र, कोई भी गुरु, कोई भी धर्म पिता पतितों को पावन नहीं बना सका। शिव जयंती होती है तो कहेंगे वो ही ऊंचे थे ऊंचा, जरूर वो ही पतितों को पावन बनाने आया होगा। 365 की वाणी का दूसरा पेज। तो कब आते हैं? वो कहते हैं कि बरोबर कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर आता हूं। इसको कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है, फिर कुंभ भी कहा जाता है। ये कुंभ को कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है, वो पानी और सागर का या पानी और पानी की नदियों का कुंभ नहीं, वो तो हुआ जिस्मानी आर्टिफिशियल। से कोई पतित से पावन नहीं बन सकता, नाम कुंभ कर दिया है। नहीं तो कुंभ किसको कहा जाता है, जबकि ज्ञान सागर पतित पावन आए सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं। बरोबर ये भी जानते हो कि भारत में जब देवी देवता धर्म था, क्योंकि एक ही धर्म था ना, देखो ये चित्रों में बताया जाता है, ये गोले में भी, कि बरोबर जब सतयुग आता है तो त्रेता नहीं है, त्रेता है तो फिर द्वापर नहीं है, सतयुग पास्ट हो गया, द्वापर पीछे कलयुग आता है, यानी वो पास्ट हिस्ट्री हो गई, तो ये हो गया ना। सतयुग था जिसको कहा जाता है सूर्यवंशी राज्य। अच्छा, त्रेता में भी राम राज्य था, जिस त्रेता की बड़ी भारी महिमा है, कहते हैं राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार। देखो कितनी महिमा है, जब त्रेता की इतनी महिमा है तो सतयुग की तो और ही होगी, इसलिए उनको स्वर्ग कहते हैं, बैकुंठ भी कहते हैं, और भारत ही बैकुंठ था, स्वर्ग था। बरोबर भारत में थोड़ी जीवात्माएं थी जो पवित्र थी। अच्छा, तो और सभी धर्मों की आत्माएं निर्वाण धाम में थी, उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निर्वाण धाम। तो अभी आत्माएं क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है, कोई भी मनुष्य मात्र बिल्कुल जानती नहीं है कि आत्माएं बिंदी हैं। बाबा ने कल भी समझाया था, भ्रकुटी के बीच में रहती है बिंदी छोटी सी, देखो उनमें 84 जन्म का कितना पार्ट है। बाबा ने कल भी समझाया कि जो आत्मा है ये 84 जन्म लेती है, मनुष्य तो कह देते हैं 84 लाख जन्म। अब ऐसे तो हो नहीं सकता है कि मनुष्य 84 लाख जन्म ले और फिर कल्प कल्पांतर फिरते रहे। 84 लाख जन्म तो कभी होते ही नहीं है, मनुष्य का 84 का चक्कर, सो भी सभी मनुष्यों का तो होगा ना। चक्कर तो जरूर होगा, परंतु सभी 84 जन्म तो नहीं लेंगे ना। भारत में सिर्फ जो पहले आते हैं वो पीछे भी होते हैं, जो पहले थे सो पीछे में पड़ गए, अभी जो पीछे में है सो पहले चले जाएंगे, और जब पहले जाएंगे तो पीछे आने वाली सभी आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है। और ये नालिस तो बाप ही बैठ करके समझाते हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर है वो ही एक बाप है, उसको ही कहा जाता है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। अब ये अथॉरिटी क्यों कहा जाता है, वो कहते हैं मैं आकर के ब्रह्मा द्वारा ये वेदों शास्त्रों ग्रंथों गीता वगैरह का सार समझाता हूं। तो समझाते हैं कि सभी भक्ति मार्ग के कर्मकांड की सामग्री हैं, शास्त्र हैं, ये बनाए हुए हैं, क्योंकि मैंने जब आए पतित पावन बनाया, कैसे बनाया वो तो कोई शास्त्रों में लिखा ही हुआ नहीं है। मैंने कैसे आकर के ये गिरेचा, किसका नाम ही है राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। स्वकी राजा ही पाने वाला, दिलाने वाला अश्व आत्मा को कहा जाता है, मन को कहा जाता है। तो मन रूपी अश्व को स्वाहा करना है, रुद्र के द्वारा ये ज्ञान यज्ञ रचा जाता है जो रौद्र रूप धारण करता है, इसलिए रुद्र ज्ञान यज्ञ है। कोई कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ऐसे तो रुद्र कहा जाता है शिव को, जिस यज्ञ में क्या करना होता है, स्वाहा होना होता है, यानी बाप को देह सहित सरेंडर होना होता है। बाप कहते हैं बच्चे, देह सहित ये जो भी तुम्हारे मित्र संबंधी गुरु गुसाई काका बाबा चाचा, अभी इन सब को भूल जाओ, अभी सिर्फ अपन एक बाप को याद करो। इसी को कहा जाता है सर्वधर्मान परित्यज्य। यानी जो भी तुम्हारे धर्म है, मैं सन्यासी हूँ, उदासी हूँ, क्रिश्चियन हूँ, फलाना हूँ, ये सभी देह के धर्म है। भतीजा हूँ, पुत्र हूँ, पत्नी हूँ, पति हूँ, ये कौन से धर्म है? हैं? देह के धर्म है। इन सब को अभी छोड़ दो, माम एकम। देखो ये कौन कहते हैं मुझे अपने बाप को याद करो। आएंगे तो जरूर कोई शरीर तो लेंगे ना, तो आते हैं और कहते हैं मैं आ करके एक साधारण शरीर जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं कि हमने कितने जन्म लिए हैं, तो बताते हैं ये बच्चों हम तुमको बताता हूं। तो किसके तने में बैठ बात करे, बोलते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, तो मैं आकर के इस तन द्वारा तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताता हूं। देखो भारत का प्राचीन योग बड़ा मशहूर है, बहुत नामी ग्रामी है, विलायत में भी बहुत है। भारत का प्राचीन यानी पुराने थे पुराना, तो पुराने थे, पुराना तो भारत ही है, भारत ही नया था, भारत अभी पुराना बना, तो जरूर भारत को नया बनाया, उसको कहा जाता है प्राचीन। कैसे बना था प्राचीन भारत, नया कैसे बना? ज्ञान और योग से। योग माना मेरे को याद करो, इसको कहा जाता है मन मना भव, यानी हे आत्माए तुम एक मुझे याद करो, कोई भी देहधारी को याद मत करो। तुम बच्चे यहां बैठते हो, बरोबर इन आंखों से देखते हो कि भाई बाबा बैठा हुआ है, परंतु तुम्हारी बुद्धि ये कहती है 3-6-65 की वाणी का तीसरा पेज, बुद्धि लगी हुई है उस बाप से, शिव बाबा से, अपने निराकार बाबा से, जो सर्व का बाप है, सर्व का बाप है तो सर्वव्यापी तो नहीं है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं ना, शिवाय नमः, कहते हैं ना, तो किसको नमन करते हैं? है कोई पार्टिकुलर है या नहीं है? कोई पर्सनालिटी है या नहीं है? कोई कहे बिंदी को नमन करते हैं, अब बिंदी बिंदी तो सभी आत्माएं हैं, तो कौन सी बिंदी को नमन करते हैं? बरोबर कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, तो ऊंचा और नीचा कहां की बात है, उनकी सारी महिमा है, नंबर वन है उनकी महिमा। जो कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, देखो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी माया गाया जाता है, वो बीज जब झाड़ तैयार होता है तो बाद में सबसे ऊपर फलता है, वो है सत्य चित्त आनंद। ऐसे भी कहते हैं ना, सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। सत्य का मतलब है यानी वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, और आकर के सच बोलते हैं, बाकी जो भी मेरे लिए समझते हैं या समझाते हैं वो सभी झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो मुझे जानते ही नहीं हैं। तो मनुष्य होकर के अगर अपने पारलौकिक बाप को न जाने तो जानवर मिसल हो गए ना। क्योंकि जानवर तो जानने की कोशिश ही नहीं करते, जानवर तो भगवान से मिलने के लिए भक्ति भी नहीं करते, मनुष्य करते हैं। तो जो मनुष्य कहते हैं ओ गॉड फादर, अब उनसे पूछो फादर का ऑक्यूपेशन बताओ, अगर नहीं बता सकते तो फिर जानवर हो गया, सभी गाते तो है ना, हे परमपिता परमात्मा, सभी भक्त याद करते हैं और यहां ही याद करते हैं। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि अगर कोई बेहद के बाप को नहीं जानते हैं, क्योंकि लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, जानवर भी जानते हैं, पारलौकिक बाप को अगर मनुष्य नहीं जानते हैं तो फिर वो अभी तो जानवरों की मिसल हुआ। तो देखो वो बाप समझाते हैं इस समय में ये जानवर मिसल हैं, ये शेर हैं, नाग है, सर्प है, एक दो को दुख ही देते रहते हैं, परम पिता परमात्मा से बेमुख करते रहते हैं। तो देखो इस समय के लिए गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है, जो परमपिता परमात्मा से बेमुख करते रहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, किससे विपरीत बुद्धि, बिंदी से है, बिंदी से विपरीत बुद्धि, या कोई पर्टिकुलर है, जब विनाश हुआ था अभी फिर हो रहा है, तो फिर भी बाप आकर के कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसकी, क्योंकि तीन सेनाएं खड़ी हैं, एक है यूरोपवासी यादवों की, जिन्होंने विनाश के लिए मूसल ये इन्वेंट किए ना। अच्छा दूसरे हैं भारत के वो कौरव और पांडव, देखो कौरव और पांडव अब भाई भाई हैं। तो देखो तुम आपस में भाई भाई हो ना, तुम पांडव हो वो कौरव हैं, कौरव कांग्रेस, तो आपस में दो भाई हो गए ना। अभी तुम्हारी भी बाप से प्रीति बुद्धि है, क्योंकि बाप ने आकर के तुमको अपना परिचय दिया है, तो गाया जाता है, वो तो कहते हैं सर्वव्यापी, अब सर्वव्यापी है तो प्रीति तो हो नहीं सकती है। जब सर्वव्यापी है तो किसको याद करें, तो याद नहीं है, योग नहीं है, तो कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जिनकी विपरीत बुद्धि हो जाती है वो फिर विनाश को पाते हैं, और विनाश को कौन नहीं पाते हैं, जिनकी अंत तक प्रीति बुद्धि रहती है। अच्छा विनाश काले और फिर विपरीत बुद्धि किसकी, कहेंगे कौरवों की, वो भी विनाश को पाते हैं, फिर विनाश काले प्रीति बुद्धि वो विजय को पाते हैं, तो पांडव विजय पाते हैं, देखो है ना। तो फिर वो ही समय है। इसको ही कहा जाता है गीता का एपिसोड, यानी फिर से गीता का भगवान। अभी गीता का भगवान कौन है? मनुष्य कह देते हैं, मनुष्य कृष्ण है जो सूला कला संपूर्ण बनता है। मनुष्य कलाहीन बनता है, नहीं। बाप कहते हैं कि मैं हूं गीता का भगवान, जिसके लिए गाया जाता है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कलाओं से भी परे है। तो ज्ञान का सागर मैं हूं ना, कृष्ण तो नहीं है ना। ज्ञान का सागर मैं हूं, पतित पावन मैं हूं, कृष्ण थोड़े ही है। कृष्ण भगवान वास तो हो ही नहीं सकता है। वहां गीता में लिखा हुआ है भगवान वाच, कृष्ण भगवान वाच। भगवान तो कोई कृष्ण को नहीं कह सकेंगे। क्योंकि भगवान तो कलाओं से परे है, तो किसको कहेंगे? भगवान तो एक ही होता है जिसको पतित पावन कहा जाता है। भगवान कृष्ण को साफ नहीं मानेंगे। दूसरे धर्म वाले क्रिश्चियन से मुसलमान ये कोई भगवान को मानते हैं क्या? कृष्ण के रूप में नहीं मानते। परमपिता परमात्मा को जिसको अल्लाह मियां कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, तो जरूर कोई और को कहेंगे। न ब्रह्मा को, न विष्णु को, न शंकर को, क्योंकि इनसे भी ऊंचा वो है जिसके लिए गाया जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। अभी शंकर ऊंचे ते ऊंचा है क्या? ऊंचे ते ऊंचा वो बाप है जिसको कहा जाता है शिवाय नमः। ऐसे तो नहीं कहते शंकराय नमः। शिवाय नमः कहते हैं, गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो तुम माता पिता तो जरूर आकर के सबकी सदगति करते हैं, तो सबको इस दुख से लिबरेट कर सुख तो वो करते हैं ना। तो बरोबर होना है, क्योंकि लड़ाई सामने खड़ी है। तुम बच्चों को नॉलेज फिर से मिल रही है और बार बार कहते रहते हैं देखो तुम यहां बैठे रहते हो तो भी भले यहां देखते हो, परंतु तुम्हारी बुद्धि चली जाती है बाप के पास। बुद्धि में रहता है शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। अभी ऐसे तो नहीं है कि तुमको कोई साधु संत महात्मा पढ़ाते हैं या विद्वान पढ़ाते हैं या कोई वेद पढ़ाते हैं या शास्त्र पढ़ाते हैं। वो तो कह देते हैं कि बच्चे जो भी भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं इन सब को भूल जाओ। मर जाओ, यानी देह सहित देह के अभिमान को छोड़ दो, देही अभिमानी बनो और अपने बाप से अभी सुनो। क्या सुनो? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और योग की बातें सुनो। तो ये वही फिर कल पहले वाला जिसको प्राचीन योग कहा जाता है, वो फिर भी आकर के बाप सिखलाते। कोई कृष्ण ने थोड़े ही सिखलाया है, जो बैठ करके योग और ज्ञान सुनाए, 365 की वाणी का चौथा पेज, कृष्ण को तो कोई जानते भी नहीं है कब आया। वो कृष्ण तो एक ही बार सतयुग में देखेगा, फिर जब पुनर्जन्म लेगा तो नाम रूप फिर जाएगा कि नाम रूप देश काल फिर जाते हैं ना। तो गीता कोई कृष्ण ने थोड़ी बताई है, सुनाई भी नहीं है, सुनाई है परमपिता परमात्मा ने। अब वहां बैठ करके कहते हैं कि व्यास ने बैठ लिखा है, व्यास ने बनाई है, व्यास को भगवान कहते हैं। तो ये व्यास ने सब बातें कैसे बैठ करके बनाई है? हैं? कैसे बैठ करके बनाई? उनको कहां से स्मृति आई है जो बैठ करके ये शास्त्र बनाए, गीता बनाई? पहले पहले ही नंबर वन में भूल कर दी कि भगवान वाच। अभी भगवान कोई भी मनुष्य को नहीं कहेंगे, मनुष्य तो दैवी गुण वाले होते हैं। जो ये भारतवासी थे जिनको कहा जाता है 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान कोई 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम होता है क्या? आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है, दैवी गुणों वाले देवता। अभी तो दुनिया में है आसुरी गुणों वाले, क्योंकि वो तो था राम राज्य और ये है रावण राज्य। तो रावण राज्य में तो सभी पतित ठहरे। क्यों पतित ठहरे? खास करके बाप कहते हैं, अरे अपने बाप को जिसको वो गॉड फादर कहते फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। वो कह करके जब बुलाया जाता है तो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को बुलाया जाता है ना, कि सर्वव्यापी को बुलाया जाता है। फिर कहते हैं कुत्ते में है, बिल्ली में है, कण कण में है, फलाने फलाने में। देखो कितना पाप हुआ, तो खुद भी पाप आत्मा बनते हैं और जिनको सुनाते हैं उनको भी पाप आत्मा बनाते हैं। ऐसे पाप आत्मा बनाते बनाते सारी दुनिया पतित बन गई। तो बाप आकर के समझाते हैं, ये ड्रामा है, बनी बनाई है। तो तुम बच्चों को पतित से पावन बनना है, फिर पावन से पतित बनना है। सृष्टि तो ऐसी ही होती है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग, फिर सतयुग दो आना ही है। तो सतयुग में फिर भी देवताओं का राज्य होगा, वही राजयोग और ज्ञान। फिर से तुम सुन रहे हो, किस द्वारा सुन रहे हो? बेहद के बाप के द्वारा। और ये भी सुन रहे हैं कि शास्त्र पढ़ा हुआ तो बहुत है, फिर वो तो भक्ति हो गई। इसको कहा जाता है भक्ति कांड। ये ताली बजाना, ये करना, वो करना, बहुत धक्का खाया। धक्का खाना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये है ब्रह्मा की रात। ये भक्ति मार्ग है ब्रह्मा की रात। धक्का खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं तीर्थों पर जन्म जन्मांतर। अभी कितना दफा जन्म जन्मांतर ये गंगा में स्नान किया होगा, तो क्या पतित पावनी गंगा ठहरी? कोई पावन बने नहीं? नदियां तो सब जगह में है, वो तो सागर से निकलती है, सब जगह में पानी की नदियां हैं। तो यहां भारत में कोई पतित पावनी गंगा? देखो ये मनुष्य गंगा पर जाएंगे तो वहां भी देवताओं का चित्र है, उनका नाम भी गंगा रख देते। अभी गंगा सच सच में ये या ये? अभी वो जो देवताओं का चित्र रखते हैं वो कोई गंगाएं नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि वो ज्ञान सुन करके देवता बने हैं, नाले सुन करके मनुष्य देवता बने। गाया जाता है मानुष्य देवता की एक रत्न लागी बार। किसने बनाया अभी ये तो किसी को पता नहीं है। गाते हैं मानुष को देवता की एक रत्न लागी बार। ये अक्षर कोई ग्रंथ आदि में है तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि बच्चे मनुष्य कोई भी धर्म को जानते नहीं है, भले शास्त्र तो ढेर के ढेर है। धर्म शास्त्र किसको कहा जाता है? धर्म शास्त्र उसको कहा जाता है जिस द्वारा जो धर्म स्थापन किया, जैसे क्राइस्ट का धर्म शास्त्र बाइबल। अभी वो बाइबल को किसको पढ़ने का हक है? किसको? उस बाइबल को पढ़ने का हक ही है क्रिश्चियंस को। सब कोई अपने शास्त्र को जानते हैं कि कोई भी जाएगा मुसलमान जाकर के बाइबल पढ़ेगा क्या? अभी वो समझेगा तो कुछ भी नहीं। तो हरेक धर्म वाले को अपना शास्त्र चाहिए। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि धर्म के शास्त्र किसको कहा जाता है। अभी पहले पहले सर्वशास्त्र में शिरोमणि भगवत गीता है। देखो गाया जाता है ना माता, फिर उनको गीता माता भी कह देते। अब गीता माता है तो उसका पिता, उसको रचने वाला कौन है? तो रचने वाला फिर भी भगवान हुआ ना। असी मत, श्रेष्ठ मत देने वाला भगवान। तो श्रीमद् भगवत गीता यानी भगवान ने गीता को जैसे जन्म दिया है, जैसे बाइबल को क्राइस्ट ने जन्म दिया, मुसलमानों के कुरान को मुसलमान के धर्म पिता ने जन्म दिया, ये हुसैन ने दिया जो मुसलमानों का होता है, जिनका पटका लगा करके जुलूस निकालते हैं। तो हरेक धर्म का एक शास्त्र है, परंतु सबसे पहला धर्म शास्त्र है गीता। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता किसने गाई? भगवान ने गाई। अभी भगवान तो निराकार कोई कहेंगे, परंतु वो निराकार भगवान कैसे गावे? निराकार भगवान का नाम भी है, शिव भी कहते हैं, रुद्र भी कहते हैं, बरोबर शिवरात्रि गाते हैं और भारत में ही उनका गाते हैं, क्योंकि शिव का पहला मंदिर सोमनाथ का, सोमनाथ भी शिव को कहा जाता है, क्योंकि शिव ने सोमरस पिलाया, ज्ञान दिया, इसलिए उनका नाम रख दिया है सोमनाथ। तो देखो, पहले मंदिर यहां भारत में है, पहला मंदिर भी भारत में है। किसका मंदिर है? जरूर कहेंगे परमपिता परमात्मा का मंदिर है। 3665 की वाणी का 5वां पेज, ये ऊंचे थे ऊंचे का मंदिर है। ऊंचे कैसा? सोमनाथ का मंदिर ऊंचे थे ऊंचा कैसा? नाम क्या है? किसका नाथ? सोमनाथ। सोम चंद्रमा को कहा जाता है। देखो सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान मंदिर बना हुआ था, यहां कितने धन था अतिचार, अभी क्या है? क्योंकि पतित है। तो जब बाप को जानते हैं और उन द्वारा पावन बनते हैं, तो देखो ऐसे विश्व का मालिक बन जाते हैं। बाप को जानने से विश्व का मालिक आधा कल्प के लिए, और बाप को भूल जाने से बिल्कुल कंगाल बन जाते हैं। बस एक ही बात होती है, बाप को याद कर मिलना, माना ही बाप से वर्षा लेना। कितने का वर्षा लेना? 21 जन्म का, पवित्रता सुख शांति संपत्ति का वर्षा। तो इसको बेहद का वर्षा कहा जाता है। अभी तुम यहां आते हो, किस लिए आते हो? जो भी मनुष्य है यहां क्यों आते हैं? परमपिता परमात्मा से बेहद का वर्षा लेने, क्योंकि बेहद का बाप है, हद के बाप से हद का वर्षा, हर एक चीज है हद का सुख। भले गुरु हो, गुसाई हो, टीचर हो, कोई भी हो, उनसे तो हद का वर्षा मिलेगा, क्योंकि उनको पुनर्जन्म तो लेना ही पड़ता है। फिर दूसरा बाप, दूसरी माँ, दूसरा टीचर, दूसरा गुरु करना पड़ता है। पुनर्जन्म लिया, नया बाप, नई माँ, सब नया, तो हद का बाबा हुआ ना। अभी इस समय में तुमको बेहद का बाप मिलता है, जिसको सभी याद करते हैं, आगे पीछे सभी याद करते हैं ना। देखो उनकी कितनी महिमा है। शिवाय नमः। और उनकी महिमा बिल्कुल ही अलग है। मनुष्य सृष्टि का बीज है, मनुष्य सृष्टि का बीज कौन होगा? मनुष्य ही होगा ना। परंतु कौन सा मनुष्य होगा? गाते भी है, सत्य है, चित्त है, आनंद है, फिर कहा जाता है ज्ञान का सागर। तो किस में आते हैं? उस परमपिता परमात्मा में, जिसको परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा का लफ्ज मिलकर के होता है। क्या क्या मिलता है? हैं? परमात्मा में कौन कौन से शब्द मिले हुए हैं? परम और आत्मा। कैसी आत्मा? परमात्मा। किससे परम? जो आत्मा जितनी भी पार्टधारी है, उन पार्टधारियों के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, उनकी महिमा कितनी भारी है। ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर। तो बाप ठहरा ना, किस लिए है? जरूर बच्चों को इनहेरिटेंस देने के लिए है। देखो अभी तुमको इनहेरिटेंस दे रहे हैं, बरोबर तुम 100 फेर देवता बनते हो। देखो देवताओं की महिमा कौन सी है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। क्योंकि वहां हिंसा तो होती नहीं है। क्यों? अरे वहां रावण का राज ही नहीं है, वहां ये 5 विकार रूपी रावण राज्य है ही नहीं। अब ये तो किसी को मालूम नहीं है। शास्त्रों में तो बकवाद लिख दी है कि त्रेता में भी रावण था। श्री कृष्ण को 108 रानियां थी। अभी सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण, 16 कला संपूर्ण बालक, उनको 108 रानियां कहां से आई? जानते भी नहीं है कि वो कृष्ण सतयुग में होता है। उनको कुछ पता नहीं है कि ये श्री कृष्ण फिर नारायण बनते हैं। राधे से इनका स्वयंवर होता है और इनको अलग कर दिया। श्री लक्ष्मी नारायण के बचपन की कोई जीवन कहानी नहीं है? नहीं तो श्री लक्ष्मी और नारायण के बचपन हैं राधे और कृष्ण, और उनको बहुत प्यार करते हैं। एक तरफ में बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं गीता का भगवान, दूसरी तरफ में कह देते हैं 108 रानियां फलानी, और फिर कहते हैं सर्प ने डसा फलाना किया। तो देखो शास्त्रों में ये सब बकवास लिखा हुआ है, झूठा लिखा है ना। तब तो गाया जाता है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। और बड़े से बड़े भूल झूल कौन सी है, जो बड़े से बड़ी भूल मनुष्य को दुर्गति की तरफ ले जाती है। भगवान को बाप को कह दिया सर्वव्यापी, कुत्ते में बिल्ली में फलाने में पत्थर पत्थर में कण कण में, और फिर वो नाटक बनाते हैं कण कण में भगवान नाटक सिद्ध करके बताते हैं। जब कण कण में है तो फिर बुद्धि का योग किसके साथ लगे, बुद्धि तो और ही बिखर जाएगी। ज्ञान योग जो प्राचीन गाया जाता है वो किसने सिखलाया, कण कण ने सिखलाया क्या, कृष्ण बच्चे ने तो नहीं सिखलाया। कृष्ण तो इस समय में अंतिम 84 जन्म के अंत में है, पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंत में है, तो कौन बताएगा, ये तो बाप का काम है ना। जिसके लिए सब भूल गए, सब जो भी मनुष्य है उनको कहा ही, उनको मालूम ही नहीं पड़ा। विलायत वाले भी कहते हैं भाई सर्वव्यापी है ओमनीप्रेजेंट। तीसरा क्या कहते हैं, यानी वो हाजिर नाजिर है, फिर उस हाजिर नाजिर की कसम भी उठाते हैं। अभी देखो कसम भी झूठा उठाते, गवर्नमेंट से कितनी लिखा पड़ी हुई है, अरे भाई तुम लोग सब झूठे कसम उठाते हो, इस कसम को फिराओ। गीता लेते हो हाथ में फिर कह देते हैं ओमनी प्रेजेंट, फिर कह देते हैं हाजिर नाजिर है। देखो गांधी जी के हाथ में भी गीता थी और कह देते थे पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। अभी फिर चले गए द्वापर के सीताराम को और गीता है हाथ में, चाहते हैं राम राज्य। राम राज्य के आगे तो सूर्यवंशी राज्य था, वो भूल गए। राम राज्य के आगे करके कृष्ण को फिर द्वापर मिले आए। देखो कितना भूल की है मनुष्यों ने। तो बेहद का बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं तो जरूर वो समझाए कैसे। अच्छा शिव जयंती आती है, गाते तो है ना शिव जयंती शिवाय नमः, तो फिर आकर के शरीर वगैरह ऑर्गन्स कैसे लेंगे। मंदिर में तो निराकार का चित्र रख दिया है, अभी ज्ञान कैसे देवे। तो वो आकर के खुद कहते हैं कि मैं किसको ज्ञान देता हूं, जो पहला पहला था श्री लक्ष्मी नारायण वो 84 जन्म भोग करके अंत में मैं उनके शरीर में प्रवेश कर फिर वो आदि का ज्ञान बताते हैं। जो अंतिम जन्म में है वो ही फिर आदि का बनता है, उसको कहा जाता है सूर्यवंशी डायनेस्टी चंद्रवंशी डायनेस्टी। अच्छा ओम शांति।